पेज नंबर 34। ग, सांगीतिक संस्थाओं की शिक्षण पद्धति। भारतीय संगीत अपने आंचल में लगभग 3,000 वर्ष से भी अधिक परंपरा को समेटे हुए है। पेज नंबर 35। निरंतर विकास की गति के साथ वह आगे बढ़ रहा है। पाश्चात्य सभ्यता से पहले ही उसने अपने शास्त्रीय तथा क्रियात्मक सिद्धांतों की स्थापना कर ली थी। प्राचीन काल से ही हमारे संगीत पंडितों ने संगीत को एक गुरुमुखी विद्या माना है। अतः स्पष्ट है कि संगीत शिक्षण की यह प्रणाली संगीत उत्पत्ति के साथ शुरू हो गई थी। संगीत की प्राचीन शिक्षण पद्धति घरानों से जुड़ी हुई है। यह जो पीढ़ी दर पीढ़ी में निरंतरता चली आ रही है, वह घरानेदार तालीम की ही देन है। घरानेदार गायकों को राज दरबारों में स्थान मिल जाता था। वे अपने शिष्यों को केवल अपने ही घराने की तालीम देते थे। इसके लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता था, ना ही कोई परीक्षा होती थी और ना ही किसी प्रकार की डिग्री, उपाधि आदि की व्यवस्था थी। सेवा, लगन और निरंतर अभ्यास द्वारा स्वर साधना करना और निपुणता प्राप्त करना ही शिष्य का ध्येय हुआ करता था। शिष्यों के अध्ययन में भी किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता था, क्योंकि वे प्रायः हर प्रकार के उत्तरदायित्व से मुक्त तथा व्यस्तता से रहित रहते थे। यद्यपि इस शिक्षण पद्धति में अनेक दोष पाए जाते थे, जैसे शिष्य को प्रयत्न ज्ञान न हो पाना, समय की बर्बादी, गुरु का अत्यधिक कठोर नियम और घरानों के उस्तादों की मानसिक संकीर्णता आदि। तथापि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह तालीम शिष्य का एक उच्च कोटि का कलाकार बनाने में पूर्णतः सक्षम थी। यही कारण था कि उच्च कोटि का कलाकार बनाने में एक श्रृंखला इसी गुरु शिष्य परंपरा अथवा घरानेदार तालीम के जरिए ही पैदा हो सकी थी। इसके लिए थोड़ा परिश्रम करने पर योग्य गुरु, उपयुक्त वातावरण तथा आश्रम स्थल मिल जाते थे। 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भारतीय इतिहास के सबसे वैभवशाली कालों में गिना जाता है। इसी कालावधि में 1850 से 1900 तक भारत के क्षितिज पर ऐसे बहुत से व्यक्ति उभरे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन की सभी दिशाओं में प्राण फूंकने की कोशिश की। संगीत के क्षेत्र में भी संगीत को हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करने तथा इसके विगत वैभव को पुनर्जीवित करने के प्रयत्न किए जा रहे थे। तब तक संगीत एक कल्पना शून्य तथा अशिक्षित वर्ग के हाथों में गिर चुका था और यह संपन्न वर्ग के एक सीमित समूह का हल्के ढंग के मनोरंजन का साधन मात्र रह गया था। इस स्थिति को बदलने के लिए पुनरुत्थान तथा सुधार की आवश्यकता थी। इस आंदोलन के नायक ऐसी ही भावनाओं से प्रेरित दो नवयुवक पंडित नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय निस्वार्थ भाव से संगीत के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने संगीत कला की शिक्षण पद्धति की सीमाओं को यह जानते हुए भी चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि यह सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियों की मांग थी। पेज नंबर 36। जब रियासतों का विलय हो रहा था, तो संगीतज्ञों को राजाश्रय मिलना बंद हो गया। कलाकारों को ठुमरी टप्पा तक ही अपनी शिक्षण पद्धति को सीमित कर देना पड़ा, क्योंकि उन्हें सीखने वाली जो स्त्रियां इन शैलियों को व्यवसायिक रूप देती थीं, वे प्रायः इन्हीं घरानेदार गायकों से संगीत शिक्षण प्राप्त करती थीं। अतः जब संगीत प्रदर्शन का मुख्य स्थान बन गए तो इस पवित्र कला के प्रति उन साधारण का मोह भंग हो गया और वह निरादर योग्य बन गई। अतः संगीत कला वह संगीतज्ञों को समाज में पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके, इस कार्य के लिए उपरोक्त दोनों ही विद्वान दूरदर्शी थे और यह भली भांति जानते थे कि प्रजातांत्रिक रूप से होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसी संस्था के बारे में फैसला किया जो पूरी तरह से संगीत के लिए समर्पित हो। उनको ऐसा विश्वास था कि जब तक संगीत को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाने का फैसला न किया जाए, तब तक संगीत के स्तर को नहीं बढ़ाया जा सकता। उनकी राय थी कि जैसे विभिन्न विषयों के लिए अलग-अलग विद्यालय थे, वैसे ही संगीत के लिए भी एक अलग से विद्यालय हो। इस तरह संगीत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों के सक्रिय समर्थन और सहयोग से पंडित पलुष्कर जी ने 1901 ईस्वी की 5 मई को लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय की नींव डाली। अपनी तरह का भारत में ये पहला विद्यालय या संस्था थी जो कि बाद में एक विराट वृक्ष की तरह बढ़ता गया। निसंदेह इससे पहले भी देश में संगीत के कुछ विद्यालय थे, लेकिन वे महाराजाओं के आश्रय में ही चलते थे। गांधर्व महाविद्यालय पहली संस्था थी जो कि जनता पर आश्रित थी और उसके प्रति उत्तरदायी थी। उस समय में यह अकेला ही विद्यालय था जो संगीत की व्यवस्थित शिक्षा देता था। संगीत के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जगह जगह संगीत विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें संगीत कला की विद्वित और विधिवत शिक्षा दी जाती थी और एक निश्चित पाठ्यक्रम के उपरांत परीक्षा लेने, भिन्न भिन्न डिग्रियां अथवा उपलब्धियां या उपाधियां भी दी जाती थीं। इन्हीं विद्यालयों के आधार पर देश के भिन्न भिन्न भागों में अनेक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी निश्चित पाठ्यक्रम परीक्षा तथा उपाधि की शिक्षण प्रणाली प्रारंभ हुई जो कि आज भी प्रचलित है। इन विद्यालयों तथा कॉलेजों में संगीत कला को एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। कुछ समय पहले तक यह धारणा थी कि वर्तमान शिक्षण प्रणाली उसे प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ी हुई है, किंतु अब यह साफ स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान शिक्षण प्रणाली का उद्देश्य विद्यार्थियों को एक कलाकार बनाने का नहीं है। इसी आशंका को प्रकट करते हुए भातखंडे जी ने कहा था कि इस पद्धति द्वारा प्राप्त शिक्षा से विद्यार्थी तानसेन तो नहीं बन सकता, अलबत्ता वह कानसेन तो अवश्य बन सकता है। आजकल शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए केंद्रों तथा प्रदेशों में संगीत संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। उत्तर भारत के प्रमुख नगरों में छोटे बड़े स्तर की संस्थाएं संगीत सभा, सेमिनार और वार्तालाप की कार्यक्रम आयोजित करते हैं। संगीत शिक्षा वर्तमान समय में दो प्रणालियों में बंटी हुई है या दो प्रणालियों के आधार पर दी जाती है, गुरु शिष्य परंपरा और स्कूल विद्यालय में संगीत शिक्षा। प्राचीन काल की गुरु शिष्य परंपरा के अनुकूल आज भी अनेक विद्यार्थी संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्राचीन काल के अपेक्षा इस पद्धति से संगीत की शिक्षा प्राप्त करना आज अधिक सुलभ हो गया है। व्यावसायिक संगीतज्ञ आज भी इसी रीति से शिक्षा प्राप्त करके कलाकार बन रहे हैं। दूसरी ओर विद्यार्थियों का यह वर्ग है जो मात्र डिग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से शास्त्रीय संगीत में रुचि रखता है तथा उसे सीख रहा है। वर्तमान में इस वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है। पाठ्यक्रम पर ही आधारित विषय की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आज पूरे भारतवर्ष में बहुत अधिक संख्या में हैं। विद्यार्थियों की इस ओर रुचि देखकर स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में संगीत विषय को पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थापित सरकारी स्कूलों में शास्त्रीय संगीत एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है।